ऑल रतन हमारे मोहन सिंह हलवाई जी उपस्थित हैं। आपका टॉपिक है एकाग्रता से एक रस स्थिति। आप यज्ञ के एक अनमोल मम्मा बाबा की साकार पालना लिए हुई आत्मा है। पूरा ही परिवार साकार मम्मा बाबा की पालना लिए और बाबा के डायरेक्शंस पर ही आप वैसे इंजीनियरिंग पढ़ाई किया, सर्विस में थे, बाबा ने इनको अलग अलग स्थानों में, क्योंकि जहां जहां सर्विस के कारण जाना होता था वहां वहां जिस समय सेवा केंद्र हमारे यहाँ नहीं थे, बड़े बड़े सिटियों में जहां जहां ट्रांसफर होता था वहां सेवा करने के निमित्त बनते थे। साकार बाबा ने ही आपको अनेक सेंटर खोलने के निमित्त बनाया। आपकी क्रिएटिव माइंड, एक तो सेंटरों की सेवा, साथ साथ मेले, साथ साथ नए नए चित्र प्रदर्शनी, दिमाग आपका चलता ही रहता है, वैरायटी चित्र बनाना, सेवा के साधन बनाना, ये आपका आज के डेट पे भी कुछ ना कुछ थिंकिंग चलता ही रहता। वैसे आप हमारे साइंटिस्ट इंजीनियरिंग के चेयरपर्सन हैं, साथ साथ अपने बुद्धि को सदा लगा के रहते हैं, अपनी आयु को एक तरफ रखते हुए अभी भी वो आपको अपने आप को यूथ समझते हुए सेवा करते रहते हैं। तो आज आपसे हम सुनेंगे एकाग्रता से एक रस स्थिति, कैसे उन्होंने भी अपनी स्थिति बनाई है, उस आधार से हम सबको भी प्रेरणा देंगे। आदरणीय मोहन भाई जी।
ओम शांति। समय प्रति समय बाप दादा हम बच्चों को जैसा समय होता है उस अनुसार तैयार करने के लिए नई नई प्रेरणा देते रहते हैं। वर्तमान समय जो बाबा की लहर चल रही है तो उसमें वैसे तो बाबा ने अनेक गुण और शक्तियों की बात बताई है समय प्रति समय, लेकिन वर्तमान समय बाबा एक गुण पर विशेष हम बच्चों का ध्यान खिंचवाना चाहते हैं। कौन सा है वो गुण? रहम दिल। वर्तमान समय हम बच्चों को बहुत बहुत आवश्यकता है रहम दिली का गुण, और जितना जितना रहम दिली का गुण आता जाता है उतना उतना स्वतः ही सब बाबा के बच्चों को देखते हुए भी, चाहे कोई कितना भी पुराना हो, नया हो, आगे हो, पीछे हो, सब देखते हुए भी बाबा हम बच्चों को चाहता है कि हमारे अंदर रहम दिली का गुण आएगा तो साथ ही साथ दातापन का गुण भी आता जाएगा। देते चले बस दातापन, कोई स्थूल चीज देने की बात नहीं है, लेकिन बाबा चाहता है कि दातापन का गुण जितना हम बच्चों में आता जाएगा उतना उतना हम अपनी मंजिल के नजदीक पहुंचते जाएंगे। और इसके साथ साथ चूंकि बाबा ने बता दिया है कि वर्तमान समय अभी माया हमारे सामने उस रूप में नहीं आएगी जिस रूप में माया को हम जानते हैं, जो हमारी कमजोरियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष पर चिंतन पर निंदा आदि आदि, तो ये सब तो हम जानते हैं। थोड़ा भी अगर कोई करेगा और ये बात देखने में आई तो पता चल जाएगा ये माया है। लेकिन वर्तमान समय के मुताबिक माया इस रूप में नहीं आएगी कि जिस रूप में हम माया को जानते हैं, बल्कि माया भी बड़े अपने मोहनी रूप में, सुहावने मीठे रूप में, उस रीति से हमें अपने वश करने के प्रयास करती है जो कि हम एक दिव्य गुण जैसे जानते हैं। लेकिन माया उस रीति से, जो हमारी कथाएं भी हैं, रामायण हो चाहे महाभारत का हो, कुछ भी हो, अनेक अनेक कथाओं में भी इस प्रकार के वर्णन हैं कि माया उस रूप में नहीं आती जिस रूप में नॉर्मली उसे जाना जाता है। तो इसके लिए क्या चाहिए? बाबा ने एक और शक्ति की विशेष आवश्यकता बताई है। कौन सी? परखने या निर्णय शक्ति आदि। और वो शक्ति भी किस चीज से आएगी? एकाग्रता से। क्योंकि हम चाहते हैं परखने निर्णय करने की शक्ति, अशक्तियों में हम बहुत साल से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, लेकिन एकाग्रता जिस प्रमाण में होनी चाहिए हम बच्चों की ही, उस प्रमाण में न होने के कारण वो परख नहीं पाते। और इस कारण से क्या होता है? निर्णय शक्ति यथारत नहीं होती तो सफलता भी उतनी नहीं मिलती। इसलिए ये जरूरी है कि एक हम अपनी एकाग्रता को बढ़ाते जाए। और एकाग्रता के लिए तो बाबा ने कई बातें बताई हैं। आप सब बाबा के पुराने ही बच्चे बैठे हैं। क्या क्या बातें बताई हैं बाबा ने एकाग्रता के लिए? सबसे बड़ी चीज है एकांत, मन का एकांत। बाहर का एकांत भी हम थोड़ा बहुत ढूंढ लेते हैं, और लेकिन मन के अंदर जो संकल्प चलते हैं एक, इसीलिए बाबा ने एकांत का अर्थ बताया है, एक की याद में अंत। एक बाबा की ही याद में अंत हो, वो है असली एकांत। इसीलिए एक तो एकांत चाहिए एकाग्रता के लिए, बाहर का एकांत, मन का एकांत, साथ ही साथ और क्या चाहिए? एक बाबा ने बताया है इकोनॉमी। इकोनॉमी माने बचत। जैसे अब धन की बचत के तो हम सभी अनुभवी हैं कि जितना धन की बचत करेंगे उतना समय पर ये धन काम में आएगा, और जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन होगी, मुश्किलात की घड़ियां होंगी, उनको हम सफलतापूर्वक पार कर सकेंगे। इसीलिए एक है इकोनॉमी। लेकिन कौन सी इकोनॉमी? हाँ, समय और संकल्प दो खजाने बाबा ने जो बताए हैं, तो संकल्प की इकोनॉमी। और साथ में क्या चाहिए? इसी के साथ साथ एका नामी। इकोनॉमी अलग है और एका नामी यानी एक के नाम में ही हमारा अंतिम श्वास निकले। तो इसीलिए वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। चाहते तो हम सभी हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में शुरू से ही सुनते आए हैं अंतमति सो गति है। चाहते भी हैं हम सब, लेकिन अक्सर करके देखा गया है कि अंत में क्या होता है, बुद्धि वहां जाती है जहां बुद्धि का कुछ ना कुछ लगाओ झुकाओ वो होता है। हम चाहें ना चाहें, लेकिन इतनी सूक्ष्म चीज है, अपने आप ही बुद्धि वहां चली जाएगी। इसीलिए एक हमें ये भी देखना है कि अंत समय, क्योंकि जो अंत मति सो गति का गायन है ना, तो अंत में जैसे जो जिन्होंने सर्विस की है, लौकिक जॉब में रहे हैं, जानते हैं कि लास्ट में, हाँ, लास्ट पे सर्टिफिकेट होता है, LPC बोलते हैं, कि लास्ट में जो मिलता है सैलरी जो ड्रॉ करता है व्यक्ति, उसके आधार पर ही उसकी पेंशन या ग्रेजुटी और सारी चीजें पूरी सब उसी आधार पर ही कैलकुलेट होती है, और वो ही फिर जीवन पर्यंत लगभग मिलती चली जाती है। इसीलिए अंत मते हमारा जो पुरुषार्थ है इसी के लिए चल रहा है कि अंत मति सो गति, कि अंत में हमारी वैसी ही मति हो, वैसी ही गति हो। और साथ में क्या देखना है, जो बाबा ने बताया है अंत में, तो जिस के लिए हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा ने ये तो बता ही दिया है, सब अचानक होना है, एवर रेडी रहो, ये सब है, लेकिन ये सब भी होगा, और जो भी होगा वो इतना एक्यूरेट होगा कि जो हमने बहुत काल तक प्रैक्टिस की हुई होगी, बहुत काल का अनुभव होगा, वो ही उसी चीज के द्वारा ही हम पास हो सकेंगे, सफल हो सकेंगे। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा, आप सभी अनुभव है, बचपन में कभी साइकिल चलाना सीखा, कितनी बार गिरे भी होंगे या कुछ, लेकिन छोड़ नहीं दिया, करते रहे अभ्यास, करे दो चार बार गिरे भी, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद अभ्यास करते, अभी तो ऐसा हो गया साइकिल हो, स्कूटर हो, इवन और कोई भी वाहन हो, बात करते रहेंगे, इधर उधर मोबाइल से भी बात करते रहेंगे, लेकिन ऑटोमेटिकली अपने निर्धारित रास्ते पर ही हो जाएगा। अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, इसीलिए अभी उसी प्रैक्टिस की आवश्यकता है, और इसीलिए बाबा ने कहा एकाग्रता को अपनी बढ़ाते चलो। ये एकाग्रता हम सभी का अनुभव है, इतने साल हो गए मुझे ही ज्ञान में, लगभग 60 वर्ष हो गए, और देखते हैं अभी भी कि अगर जो कार्य में व्यस्त होंगे, चाहे सेवा का कार्य हो, चाहे कोई किसी भी प्रकार का अलौकिक कार्य हो, लौकिक अलौकिक, तो अगर थोड़ी सी भी बुद्धि उधर रही हुई है, कोई काम बाकी है, तो योग करने आएंगे भी, लाल लाइट भी जल गई, गीत भी बजने लगा, बहुत वातावरण भी बड़ा सात्विक है, लेकिन बुद्धि स्वाभाविक रीति से वहां जाएगी, जो कुछ पेंडिंग काम होगा, जो कुछ रहा काम होगा, या तो वहां जाएगी, ये काम करना अभी बाकी है, ऐसा होगा, या फिर और बुद्धि कहां जाएगी, जिधर ज्यादा झुकाव होगा उधर बुद्धि ऑटोमेटिकली चली जाएगी। इसीलिए अभी हमें अल्टीमेट लक्ष्य तो हमारा यही है कि एक रस स्थिति हो हमारी, जो गीता में भी कहा है ना, मान अपमान निंदा स्तुति हानि लाभ दुख सुख जय पराजय हर परिस्थिति में हमारी मानसिक अवस्था एक रस रहे, तो उस स्थिति पर पहुंचने के लिए ही हम ये सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्योंकि ये भी हमें मालूम है कि अंत समय तक ये परिस्थितियां आनी ही हैं, जिसमें जय पराजय दुख सुख ये होगा, और ये हमारी अवस्था को डगमग न कर सके, इसीलिए हम अभी से ही उसके लिए तैयार हो रहे हैं। और हम लोगों के सामने तो रोल मॉडल ब्रह्मा बाबा ही रहा शुरू से, एक ही आत्मा है जिसने कि वो ऐसी स्थिति को प्राप्त कर करके अंत में उस अवस्था को प्राप्त किया जो कि हम सबका लक्ष्य है। मुझे याद आती है बाबा से पहले मम्मा ने जब शरीर छोड़ा था, एक घटना आप सबको याद होगा, किस दिन मम्मा ने शरीर छोड़ा था, कौन सा जून था, 24 जून, उस दिन मम्मा ने शरीर छोड़ा। मधुबन में ही मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो बाद में उसकी पूरी दिनचर्या सारा भेजी गई थी सब जगह। मैं भी उस समय लखनऊ विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन कर रहा था तो देखा, और उस टाइम वहाँ पर मम्मा ने जब शरीर छोड़ा, मम्मा आत्मा गई सूक्ष्म वतन, शरीर तो यहीं था, तब तो साकार बाबा भी यहाँ थे। तो बाबा बच्चों का ध्यान बहुत ज्यादा इधर उधर ना भटके, उन्हें बहुत दुख का अनुभव ना हो, तो बाबा चलो बच्चे, हिस्ट्री हॉल में मामा का शरीर रखा गया, सब योग में बैठते हैं, बाबा भी योग में बैठेगा, आओ मामा का सब आवाहन करो। मामा कैसे जा सकती है, क्योंकि उस समय तो ज्ञान में यही था सबको इकट्ठा ही जाना है, और सब इकट्ठा जाएंगे और फिर उसके बाद सृष्टि का अंत हो जाएगा। तो योग में बैठे, उधर मामा सूक्ष्म वतन में पहुंचे जब आत्मा, तो वहां पर बाप दादा ने पूछा, अव्यक्त सूक्ष्म वतन वासी, तो मामा आपने कर्मातीत स्थिति का अनुभव किया है? तो मामा ने पहले देखा, फिर मामा ने कहा, नहीं बाबा मैं तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं किया। बच्चे नहीं किया, अच्छा अभी तुम्हारा शरीर हिस्ट्री हॉल में रखा है, वहां जाओ और उस शरीर में प्रवेश करके कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आओ। मामा को बाबा ने वापस भेजा या। और कर्मातीत अवस्था माने कर्म करते भी उससे न्यारे निर्लिप्त अलिप्त। तो मम्मा नीचे आई, काफी समय तक मम्मा नीचे रही, और फिर मम्मा जब ऊपर गई वापस, तो बाबा ने पूछा मम्मा से कि मम्मा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आई? तो मामा ने कहा कि नहीं बाबा मैं नहीं कर सकी। क्यों मामा? आपको भेजा तो इसीलिए ही था कि आप कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आओ। मामा ने कहा कि बाबा मैं गई, मैंने बहुत प्रयास किया कि शरीर में मैं प्रवेश कर सकूं, लेकिन शरीर तो जैसे बिल्कुल ठंडा हो गया था, उसमें कोई भी चुरपुर नहीं हुई, कोई भी उसमें जीवन नहीं आया। कई बार मैंने प्रयास किया, लेकिन उस शरीर ने जैसे कि मुझ आत्मा को स्वीकार ही नहीं किया, इसीलिए फिर काफी देर के बाद मैं यहाँ आपके पास आ गई। तो बाबा ने कहा कि देखो मामा, परम धाम से जिस स्टेज में जो आत्मा उतरी है, हर आत्मा की कोई ना कोई स्टेज है जो अपनी अपनी स्थिति के अनुसार परम धाम से उतरी। कोई सतयुग के आदि में उतरा, कोई बाद में उतरा, त्रेता में, द्वापर में, आदि आदि। तो जो भी आत्मा जिस स्थिति में उतरी है अपनी सीट को छोड़ करके, जब तक वो आत्मा पुनः अपनी उसी स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक वो परम धाम नहीं, अपनी सीट पर नहीं जा सकती। जिस सीट को उसने छोड़ा है, छोड़ करके आई है, तो उसे वो ही स्थिति को, उसी पवित्रता की स्टेज को वो प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाके वो अपनी सीट पर बैठेगी परम धाम में। उसके बाद अपने ड्रामा प्लान अनुसार फिर सतयुग में आएगी, या जैसे जब जब आना होगा वो आएगी। तो ये बात सब बच्चों को भी पक्की करा देना कि इस संगम युग में हम बच्चों को किसी भी हालत में कोई परेशान नहीं होना है। कभी ये संकल्प ना आए कि इस अवस्था में मेरा शरीर छूट जाए तो अच्छा है, क्योंकि कोई तन की तकलीफ, मन का, धन का, संबंध का कटुता है कहीं संबंधों में कोई, तो किसी न किसी प्रकार की संगम युग में पेपर तो आएंगे ही, अंत तक भी आते रहेंगे। लेकिन कभी भी बच्चों को किसी भी हालत में परेशान, दुख कंटालना नहीं है। ऐसा क्यों नहीं, वो तो होगा, अगर पेपर नहीं आएंगे तो फिर पास विद ऑनर्स कैसे बनेंगे। तो इस तरीके से बाबा ने बताया, और फिर मामा को कहा जाओ मामा, अब आपको फिर से पार्ट बजाना है, जिस घर में जन्म लेना है आप वहाँ आपका आह्वान हो रहा है, आप जाओ और उस रीति से फिर पार्ट बजाते बजाते जो बचा हुआ इस जन्म का पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ करते करते जब उस जन्म में कर्मातीत अवस्था को पा लोगे, उसके बाद फिर बाबा ऊपर जब बुलाएगा, उसके बाद तुम्हें फिर अपनी स्टेज प्राप्त करके फिर नया जन्म सतयुग में लेना है। तो समझा, इससे हम सबको एक तो ये शिक्षा मिलती है कि इस संगमयुगी जीवन में हमें किसी भी हालत में अपने को दुखी नहीं करना है, अशांत नहीं होना है, ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, नहीं, जो भी स्थिति है उसमें खुश संतुष्ट रहना है, पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते चलना है, और उस पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते हुए फिर हमें अल्टीमेटली हमारी उसी अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करना है, जिस अवस्था में हमने परम धाम को छोड़ा था, अपनी सीट को छोड़ा था। और जब बिल्कुल उसी अवस्था को एकदम प्राप्त कर लेंगे, तो यहाँ से सब समेट करके फिर परम धाम चले जाएंगे। तो इसीलिए इस बात को हर एक को बहुत गौर से प्रयास यही करना है कि हमें किसी भी हालत में वो अपनी अवस्था को ऊपर नीचे नहीं होने देना है इस संयम समय पर। तो एकाग्रता की बात जब हो रही थी तो ये एकाग्रता की अवस्था से क्या होता है, जितनी एकाग्रता की अवस्था होती है उतना ही फिर व्यक्ति जीवन में सफल भी होता चला जाता है और उसके साथ साथ वो अपने टेलीपैथी के द्वारा संकल्पों के द्वारा जहाँ चाहे जिस जगह चाहे जिस व्यक्ति के पास जाए जितना समय चाहे उतना समय वो बिता सकता है। तो ब्रह्मा बाबा का भी देखा हमने, यहाँ पर विश्व किशोर दादा थे यज्ञ के आदि, शुरू से ही रक्षक की तरह मैनेजर की तरह, और उनका तबीयत बॉम्बे में कोई ऑपरेशन वगैरह के लिए गए थे, तबीयत खराब हुआ तो वहाँ से समाचार आता था बाबा, क्योंकि इतना उस टाइम में 1967 में लगभग बाबा से एक दो साल पहले 69 में तो बाबा ने शरीर छोड़ा, तो 67 वगैरह में जब वो बम्बई में थे तो उस समय तो मेडिकल साइंस भी इतनी एडवांस नहीं थी, तो उन्हें दर्द भी बहुत होता था, नींद भी नहीं आती थी इतना, तो वहाँ से समाचार आता था बाबा आज इन्होंने नींद नहीं की, बहुत कष्ट रहा। तो फिर बाबा यहाँ से उन्हें योगदान किया करते थे, शक्ति वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन भेजते थे जिससे उस शक्ति को वो ग्रहण करके तब बहुत अच्छी आराम की नींद सो जाते थे। अगले दिन समाचार आता था बाबा कल तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह आराम किया। फिर इधर बाबा फिर अपने काम में जब व्यस्त हो जाते थे वो शक्ति नहीं भेज पाते थे तो उन्हें फिर अगले दिन वो कष्ट होने लगता था। तो बात ये है कि हम अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के द्वारा भी ये मन बुद्धि संस्कार वृत्ति जो है सबसे सूक्ष्म चीज है। व्रत तो हम सब लोगों ने भक्ति मार्ग में बहुत रखा है, शिवरात्रि भी गई है, उससे पहले भी जो भी त्योहार आते हैं व्रत वगैरह रखते हैं, लेकिन ये व्रत में क्या होता है, सफलता तभी होती है जब उसके अंदर दृढ़ता होती है। भक्ति मार्ग के बहुत व्रतों में आप सबका अनुभव है, आज नमक नहीं खाना, आज ये हनुमान जी का व्रत है, मंगलवार है, शनिवार है, बहुत प्रकार के व्रत होते हैं। तो जितनी दृढ़ता होती है सफलता होती है, और व्रत से ही वृत्ति शब्द बना है। तो ये वृत्ति हमारी ना जितनी हम में दृढ़ता होगी उतनी हमारी वृत्ति शक्तिशाली होगी, और उतना हम अपनी वृत्ति के द्वारा जिस आत्मा तक चाहें उस आत्मा तक पहुंच सकते हैं संकल्प के द्वारा। और उसमें क्या होगा कि जैसे जब वहां पहुंचेंगे तो जिस आत्मा को जो चाहे उस आत्मा को हम उस चीज का दान उस चीज का अनुभव वो सहज रीति से करा सकते हैं, जो कि एक रस अवस्था में बनाने में किसी की भी बहुत बहुत मददगार होगा। परिस्थितियां तो अंत तक आएंगी, बाबा ने भी अपना परिस्थिति को ना जो भी आती थी उसके लिए अपना हल खुद ढूंढा हुआ था। बाबा को एक परिस्थिति कौन सी आती थी, खांसी की। कई बार मुरली चलाते चलाते बाबा को काफी तेज जैसे खांसी आ जाती थी और फिर बाबा की आंखें भी जैसे गीली हो जाती थी। तो बाबा ने क्या किया हुआ था, बाबा की संधि के पास ही ना श्री कृष्ण का चित्र था, लक्ष्मी नारायण का भी था और कृष्ण जो है पैर से लात मार रहा है कलयुग को हाथ में सुरक का, वो सब चित्र आप लोगों ने देखा है, वो सब ट्रांसलाइट के पिक्चर बाबा के पास ही रखे रहते थे। तो बाबा बस कहता था बच्चे देखो अभी तो मन भी तमो प्रधान है, ये तन भी तमो प्रधान है, क्योंकि तन जो है विकारों की उत्पत्ति है और आत्मा तो सतयुग से पार्ट बजाते बजाते अब तक आते आते बिल्कुल ही तमो प्रधान हो गई है। इसीलिए अब बस बाबा को यही है, कल बाबा जाके जब ऐसा मिशनु कृष्ण बनेगा, नई दुनिया होगी, चारों तरफ खुशी खुशी होगी, शांति होगी, प्रेम होगा, आनंद होगा, तो बच्चों को भी इसी अवस्था में रहना चाहिए। और बाबा उस अवस्था का वर्णन करते करते एकदम खुशी में जैसे बाबा बिल्कुल क्या करते थे, खग्गियां भी मारने थे और बाबा का चेहरा इतना चमक जाता था कि बस जो भी देखता था बाबा को दृष्टि नैन मुलाकात करता था वो तुरंत ही देह से न्यारा हो जाता। ये वास्तव में बहुत बहुत अभ्यास के बाद ही संभव है। हम सब लोगों ने पढ़ा है बाबा ने कितना अभ्यास किया था अपने को आत्मा समझने के लिए, परिवार वालों को आत्मा समझने लिखा, फिर उससे क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, क्या फायदा हुआ बाबा को, क्योंकि जब कोई भी पार्टी आती थी, कोई बच्चा आता था, बस बाबा ऐसे ही हाथ फैला, आओ बच्चे, आओ आओ मीठे बच्चे, आओ स्वीट चिल्ड्रन, आओ आओ, बस इतना बाबा के नैनों में भी प्यार भरा होता था और चुंबकीय आकर्षण इतना तेज था कि हम सब बाबा की बाह में खींचे चले आते थे। और फिर क्या होता था, जैसे ही बाबा की बाह में आए और विदेही हो जाते थे। क्यों, क्योंकि बाबा का अंग अंग बाबा ने इतना स्पिरिचुअली चार्ज कर लिया था। बाबा भी कहता है ना बच्चे ऐसा होना चाहिए, ये रोंगटे भी खुशी में खड़े हो जाने चाहिए। तो बाबा को देखते थे जब ऐसी स्थिति होती थी तो बस बाबा ने देखा, आओ बच्चे, बस विदेही हुए, हम सब लोग देवान भूत जाते थे। फिर बाबा थोड़ा थपथपाते थे, आओ बच्चे, आओ आओ बच्चे, वापस आओ। फिर हम लोग न चाहते भी, जैसे कोई आत्मा जाती नहीं थी लेकिन विदेहीपन का ऐसा अनुभव होता था, अशरीरीपन की स्थिति का, कि वो अनुभव होता था, उससे शरीर से डिटैच हो जाते थे। और उसके बाद फिर बाबा वो मैं टोली खिलाता था, हालचाल पूछता था सबसे। हम भी जब पहली बार मिले बाबा को तो हम लखनऊ में पढ़ रहे थे और कानपुर में बाबा आए हुए थे, तो लखनऊ से कानपुर तक ऐसे ही 2 घंटे का रास्ता है। तो बस वहाँ पर सबने प्लान बनाया कि फलाने दिन सब लोग बस करके बाबा के पास जाएंगे, सुबह सुबह जल्दी मुरली भी सुनेंगे बाबा की और बाबा से सब मिलेंगे। तो गए, सब पहुंचे, लेकिन ठंडी के दिन थे, कोहरा था, सड़क भी थोड़ी टूटी फूटी थी, तो पहुंचते पहुंचते देरी हो गई। तो वहां सब जब पहुंचे तो उसके बाद बाबा ने बस बुलाया सबको 1 by 1। मुरली तो पूरी हो गई थी, पहुंचना था सुबह 7:30 बजे, तो पहुंचे 9 बजे के बाद, लेकिन फिर भी बाबा चिट चैट सबसे कर रहे थे, सबको बच्चों को टोली खिला रहे थे और चिट चैट लखनऊ वालों का इंतजार हो रहा था। एक के बाद एक मिले, पहले बुजुर्ग मिले, बड़े मिले, परिवार वाले, फिर हाँ हम तो तब बहुत यंग थे, 16-17 साल के थे, तो वहाँ पर जब बाबा के पास गए मिले तो बाबा ने कहा आओ बच्चे आओ, बाबा तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रहा था। हाँ तो हम तो यही समझे कि नहीं लेट हो गई बस, इसीलिए बाबा का मतलब वही होगा, तो हमने वो एक्सप्लेन किया। तो बाबा ने पास में सब दादी वगैरह और होते थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि बाबा का भाव ये है, कल अब पहले के हम सब बिछड़े हुए बच्चे हैं, तो इसीलिए बाबा तुम्हारा इतने समय से, बहुत समय से इंतजार कर रहा था। वैसे भी किसी को अगर होता है तो जब इंतजार होता है तो इंतजार की घड़ियां बहुत मुश्किल से कटती हैं कहते हैं। तो खैर इसके बाद बाबा ने पूछा नाम क्या है बच्चे, तो हमारा लौकिक नाम क्या है, श्री है। श्री होता है ना, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री गोपाल, श्री, तो श्री नाम था। तो हमने बताया कि बाबा श्री नाम है, सरनेम क्या है, सिंगल बताया लौकिक, श्री क्या नाम बचाया बच्चे, एक दो बार रिपीट किया। तो बाबा तो बड़े जॉली स्वभाव के थे, सबसे बड़ी बाबा की विशेषता यही थी कि हरेक के साथ बाबा उसी रूप में घुल मिल जाते थे, बच्चे के साथ बच्चे जैसा हो जाते थे, जवानों के साथ जवान जैसा, बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग जैसा। तो बस बाबा ने कहा रे श्री आओ आओ दादी आओ, देखो आज बाबा को एक बच्चा मिला है जो बाबा से भी ऊंच है, महान है, ऐसा हो सकता है? तो सोचा कि भैया तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़े जैसे बोलते है ना, लेकिन बाबा का भाव क्या था कि देखो बच्चे अभी तो ब्रह्मा बाबा भी श्री नहीं लगा सकता, क्योंकि श्री वो लगा सकता है कौन, देवी देवता, जिनकी आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। अभी तो इस जन्म में किसी की भी ना तो आत्मा पवित्र है ना शरीर, विकारों की उत्पत्ति शरीर है, आत्मा भी इतना सतो प्रदान से तमो प्रदान बन गई है, तो इसीलिए अभी श्री तो कोई नहीं लगा सकता। तो अभी तुम्हें श्री जैसा बनना है, बाबा आज से तुम्हारा नाम चेंज करके मोहन, फिर बाबा ने वो मोहन नाम दे। तो इस रीति से अभी मोहन और फिर श्री जैसा बनना है, श्री माने श्रेष्ठ, आत्मा को भी पवित्र बनाना है, शरीर को भी पवित्र बनाना है। तो इस रीति से बाबा हर बात में जो भी मिलता था पहली बार में भी हर रीति से उसको किसी न किसी रीति से बहुत संतुष्ट कर देता था, खुश कर देता था। और किसी का नाम मानो माया देवी है तो बाबा क्या कहता था, हाँ अब तो माया की छुट्टी हो गई, हाँ अब माया दूर, अब से तुम्हारा नाम जैसा उसके अनुभव, गीता देवी। एक भाई का नाम था बहुत है गरीब दास, तो बाबा ने कहा अरे अब भगवान मिल गया, तुमसे ज्यादा रिच तो कोई नहीं हो सकता, तो तुम्हारा नाम आज से अमीर चंद। तो हमारे अमीर चंद भाई का नाम भी बदल दिया। तो भाव क्या होता था, बाबा हर आत्मा को, जो भी आत्मा होती थी उसको नया वो बना करके उसे यही प्राप्ति का अनुभव हो फर्स्ट मीटिंग के बाद ही, और फिर तो ये बाबा पहले से ही लक्ष्य तो इतना महान होता था, लेकिन तब तो पहले तो शुरू में किसी को इतनी महानता का मालूम नहीं था। दादियों को भी बाबा ने बोला हुआ था कि अगली दिवाली नहीं देखनी है, और इस तरीके से पुरुषार्थ में सब लग गए। तो ये बाबा में यही ब्यूटी थी कि बच्चों के साथ बच्चे जैसा युवान के साथ, युवान जैसा वृद्धों के साथ वृद्ध जैसा। ये विश्व महाराजन आत्माओं के लक्षण होते हैं, सबका दिल जीत करके कार्य करना। अपनी पोजीशन से तो हर एक कोई कार्य कर लेता है, कोई पोजीशन है लौकिक, लेकिन उसका हर एक का दिल जीत करके फिर उसे कार्य में लगाना, ये बाबा की खास विशेषता थी। तो इसी तरीके से बाबा कहता था कि बच्चे योग, कई आकर कहते थे बाबा से, बाबा कोशिश तो मैं बहुत करता हूँ या करती हूँ, लेकिन योग लग नहीं पाता है, बुद्धि बार बार भाग जाती है, एकाग्रता नहीं है। बाबा कहता था कि नहीं बच्चे, ये तो बड़ा सहज है, हर लौकिक बात को अलौकिक बात में बदल दो, कन्वर्ट कर दो। कोई भी लौकिक है, जो बात आती है, जैसे मैं, बाबा कई बार बोलता है ना, मैं और मेरा, मैं जब ये हो जाए अहम भाव तो क्या कहो, मैं आत्मा है ना, और इस तरह मेरा क्या है, मेरा बाबा। तो हर लौकिक बात को अलौकिक में जितना बदलते चलेंगे, उतना उतना एकाग्रता भी बढ़ती जाएगी। और योग का मतलब ये नहीं, एक बार रमेश भाई बता रहे थे, मैंने पूछा कि बाबा आप कहते हो 8 घंटा सेवा में दो, 8 घंटा नींद करो, आराम करो, और 8 घंटा फिर बाबा, एक तरफ बाबा की सेवा, दूसरा लौकिक जॉब जो भी है। तो बाबा ने कहा, बाबा का भाव ये है कि 8 घंटा याद तो कोई कर नहीं सकता, सब छोड़ छाड़ के बैठ जाए तो भी, छोड़ भी दिया लेकिन बुद्धि तो इधर उधर भागती रहेगी ना। इसीलिए क्या होना चाहिए कि 8 घंटे में कोई भी ऐसा निगेटिव कार्य हमारे मन बुद्धि कर्म के द्वारा, संकल्प वाणी के द्वारा, किसी के द्वारा निगेटिविटी ना, किसी को दुख ना दिया हो, किसी को वाइब्रेशन हमारे अशांति के, दुख के, किसी के प्रति ना गए। अभी आवश्यकता इस बात की है। तो एक बात ये है। और बाबा ने क्या करा, बाबा हमेशा कहा करते थे साथ में, जब ये एक रस स्थिति बनाने की बात आती है तो एक रस स्थिति एकाग्रता से बहुत सहज बन सकती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही बुद्धि एकाग्र होती जाती है, और आपने जो सोचा इतने समय मुझे इस स्थिति में बैठना है, और उस स्थिति में बैठे तो खुशी भी बढ़ती है, प्राप्ति का अनुभव होता है, और जितना प्राप्ति का अनुभव होगा, सफलता का अनुभव होगा, उतना उतना और क्या होगा, जो अव्यक्त फरिश्ते की तरह बिल्कुल हल्के होते जाएंगे, डबल लाइट स्थिति होती जाएगी। और डबल लाइट, एक तो लाइट माने प्रकाश की स्थिति, और दूसरा हल्का, लाइट माने हल्का। तो हल्के होंगे तो स्वतः ही ऊपर उठते जाएंगे, और भारी होंगे तो नीचे खींचेंगे। देखो प्रकृति को भी इतनी बाबा कहता है, हाँ वो है अकल, कि प्रकृति में भी विपरीत स्थिति वाली साथ साथ रहते हैं। प्रकृति पृथ्वी है, हर चीज को नीचे खींचती है, गुरुत्वाकर्षण होता है नियम, तो हर चीज को नीचे खींचती है। और जहां जहां पृथ्वी है वहां वहां वायु है, पृथ्वी है तो मनुष्य पृथ्वी पर रहते हैं तो वायु भी है, श्वास उससे ही चलता है। तो वायु जो पृथ्वी है, पृथ्वी में नीचे खींचने की शक्ति, वायु में ऊपर उठाने की शक्ति, तो विपरीत परिस्थिति वाले साथ साथ रहते हैं, लेकिन साथ साथ होते हुए भी विपरीत है, फिर भी एक दूसरे का आदर करते हुए वो पृथ्वी अपना काम करती है, वायु अपना काम करती है। तो ये ही एक परिवार में हमको, चाहे विपरीत संस्कारों वाले रहते हों, लेकिन उनके विपरीत संस्कार होते हुए भी ये कभी नहीं आना चाहिए कि इनको हम छोड़ दें, ये ज्ञान में क्यों नहीं चलते, इन्हें तो ये चलना चाहिए, इनका ये संस्कार बदलना चाहिए। नहीं, क्यों? क्योंकि विपरीत संस्कार में रहते हुए ही हमें उसमें विजय पानी है, तभी तो विजयमाला का मड़का बनेंगे। तो इसीलिए एक तो बाबा इस बात को पर विशेष बल देता है कि हर जगह आपको विपरीत स्वभाव संस्कार मिलेंगे, लेकिन विपरीत होते हुए भी उनसे आपको अलग रहना है, टकराव में नहीं आना है। बाबा ने इसमें बताया था, अक्सर करके क्या होता है, अब हमारा संसार तो यही है, ब्राह्मण परिवार, बाहर वाला दुनिया वाला कोई बहुत क्रोध करेगा, अहंकार करेगा, झगड़ा करेगा, हमें उसका खास असर नहीं होगा। क्यों? अज्ञानी है, बेचारे को मालूम नहीं है। लेकिन अगर कोई ज्ञानी आत्मा अगर ऐसा व्यवहार करती है तो हमें ज्यादा महसूस होता है, संबंधों में हमारे कटुता आने लगती है। तो दादी अक्सर क्या कहा करते थे, बड़ी दादी, कि देखो जो आपस में ना कई बार स्वभाव संस्कार में ब्राह्मणों में टकराव होता है। क्यों होता है टकराव? सबसे बड़ी बात है नंबर वन, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी, किसी न किसी बात की गलत फहमी हो जाती है। तो वो गलत फहमी होने से, कल तक मेरे साथ कोई भाई या कोई बहन बहुत अच्छी तरह प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे, धीरे 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 उनका वो व्यवहार बदलता गया, और अभी कई बार तो ऐसे हो जाते हैं कि बस सामने आते हैं, ओम शांति भी नहीं होती, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग भी नहीं होता। क्यों? दादी ने कहा कि ये संस्कार लेके तो सतयुग में जा नहीं सकते, सतयुग में तो सभी के बहुत प्रेम पूर्वक प्रेममयी संस्कार होंगे, और वहां पर तो ये टकराव होगा नहीं। तो इसलिए यहीं पर ही कभी भी किसी के साथ मानो हमारा ऐसा व्यवहार हमें देखने में आता है कि वो व्यक्ति बात नहीं कर रहा है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग पहला स्टेप है, और इसका फाइनल स्टेप है कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, बातचीत एकदम बंद हो जाती है। वो सामने से भी के भाई बहन आ रहा है, इधर से हम जा रहे हैं, सामने से भी आ रहे हैं, लेकिन ओम शांति नहीं होगी, हम सोचेंगे वो पहले बोले, वो सोचेगा पहले ये बोले, हम क्यों बोले। और वो अहम का जो टकराव होता है ना, वो सतयुग में हमें कितनी बड़ी कीमत उसकी चुकानी पड़ती है। हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं और इस संस्कार के, और जाएंगे तो हम ही लोग ही, ये ही लोग सब सतयुग में जाने वाले हैं। तो क्या होगा अगर ये संस्कार होगा, बोलचाल बंद होने का, या एक दूसरे के प्रति स्नेह भाव में कमी हुई, तो क्या होगा कि जब भी आमने सामने होंगे बोलचाल नहीं होगी, और सतयुग में फिर बहुत ही साधारण पद पा लेंगे, लेकिन पुरुषार्थ तो किया हुआ है, बाकी गुण शक्तियों में काफी मेहनत की हुई है। तो सत्युग के बाद त्रेता, द्वापर, कलयुग के अंत तक आते आते या द्वापर के अंत तक कुछ अच्छा ऊंचा पद राजाई का पा लेंगे। लेकिन कहां सत्युग में राजाई पद की बात और कहां द्वापर कलयुग में राजाई पद की बात। तो इसीलिए दादी हमेशा कहते थे कि जब भी किसी से आपको ऐसा महसूस हो कि फलाने भाई या बहन के साथ मेरे संस्कार नहीं मिल रहे हैं, कुछ बातचीत स्नेह भाव कम हो गया है, तो अपने अहम भाव को, अहंकार को थोड़ा दबा करके एक तरफ रख के उनके पास जाओ, बोलो बहन जी या भाई जी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अभी हमारे अंदर, हम लोगों के बीच में उतनी आत्मीयता नहीं थी है जितनी पहले हुआ करती थी, इसीलिए आइए हम लोग बैठ के जरा इस पर विचार करें, जरूर कहीं ना कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, जरूर कोई ऐसी बात है। तो इसीलिए जब ऐसी बात होगी, अक्सर करके एक रस स्थिति न बनने का कारण यही है, स्वभाव संस्कार में टकराव, नंबर एक। कई बातें हैं लेकिन ये बात क्योंकि बाहर की दुनिया वालों के से भी हमारे संबंध उतने स्नेह वाले नहीं रहते, क्योंकि उनके साथ खाना पीना रहना सब कुछ बदल जाता है, कुछ नहीं होता तो वो भी दूर हो जाते हैं, और हमारे दैवी परिवार के साथ अपने पुराने स्वभाव संस्कार के कारण टकराव होता है, इनसे भी नहीं बन पाते, तो फिर व्यक्ति को में थोड़ी निराशा सी पैदा होने लगती है। जो जीवन में उमंग उत्साह, जो बाबा कहता है ये दोनों आपके पंख हैं, उमंग और उत्साह, ज्ञान योग की तरह, तो ये पंखों के द्वारा आपको सदैव अपनी स्थिति ऊंची करनी है। बाबा मम्मा को देखा, दादी को, कितनी बार जो बहुत कम सेवाधारी थे उस समय बाबा के सामने, तो लेकिन कई बार ऐसी बात हो जाती थी तो कोई सेवाधारी की तरफ से विड्रॉल, हाँ, सेवा न करने का संकल्प, परिस्थिति देखने में आती थी, तो बाबा मम्मा दादियां खुद जाकर के, हाँ भाई कैसे हो मीठे भाई, और बस अपना अहम भाव छोड़ करके कि मैं यज्ञ की बड़ी हूँ, इंचार्ज हूँ, बाबा खुद उस भाव में बैठे, नहीं, बिल्कुल वो भूल करके और उसको तुरंत ही अपनी कोई भूल का एहसास होता था और वो तुरंत अपनी भूल को मान के सेवा में लग जाता। तो इसीलिए ये थोड़े समय के लिए अपने अहंकार को हम विजय, उसके ऊपर विजय पा करके फिर अगर हम कोई बात करते हैं ना, तो कोई भी ऐसा अनुभव नहीं हो। तो एक रस स्थिति बनने के लिए एक तो ये आवश्यकता है। दूसरी बात कि समस्याएं तो दुनिया में बहुत है, अक्सर करके कोई समस्या आती है हम उसका सॉल्यूशन बाहर ढूंढने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है समस्याएं बहुत हैं, आदि, व्याधि और उपाधि, ये तीन प्रकार की समस्याएं, सब समस्याओं को इनमें तीन में बांटा गया है। उपाय क्या है? इसका उपाय है समाधि। आदि, व्याधि, उपाधि, उपाय है समाधि। समाधि का मतलब कोई जंगल में चले जाओ, नदी किनारे, समुद्र के, नहीं, समाधि माने अपने अंदर झांको, अपने अंदर देखो, शांति में चले जाए, और कोई भी समस्या का बाहरी तो अटेम्प्ट करना ही होता है, कोई भी समस्या आई बाहरी रीति से, लेकिन असली समाधान उसका मिलेगा अंदर जाने से। क्यों? क्योंकि वो सुना भी होगा ना, एक व्यक्ति था थोड़ा अशांत हो रहा था, उसने सोचा गुरुजी के पास जाके जरा सत्संग करूं। गया सत्संग में बैठ गया, और भी चेले बैठे हुए थे, गुरुजी उसको सत्संग कर रहे थे। इतनी देर में भूचाल आया, अर्थक्वेक हिली, तो सारे चेले बाहर भागे एकदम, सब बिल्डिंग हिलने लगी, सारा वातावरण ही ऐसा हो गया। भागो भागो भागो, सबने गुरुजी को भी बोला, गुरुजी आप भी बाहर आइए जल्दी से, ये आपका छपरा भी हिल रहा है, कभी भी गिर सकता है। गुरुजी वहीं बैठे रहे, वहां बहुत सबने जोर लगाया, लेकिन गुरुजी वहां उसी स्थिति में बैठे रहे। फिर जब थोड़ी देर में कुछ सेकंड बाद भूचाल शांत हो गया, तो सब चेले लौट के आए और सबने कहा कि गुरुजी हम आपको इतना बुला रहे थे, आप नहीं आए, हम सब लोग तो बाहर भाग गए, और अगर ये गिर जाता तो आपको बहुत चोट लग जाती। गुरुजी सुनते रहे, और फिर गुरुजी ने थोड़ी देर बाद बोला कि जब चेलों ने बहुत जोर कहा कि आपको भी बाहर आना चाहिए था, तो गुरुजी ने कहा अरे तुमने देखा नहीं, मैं भी तो तुम्हारे साथ भागा था, तुम भी भागे, मैं भी तुम्हारे साथ भागा था। कहा गुरुजी आप तो बिल्कुल वहीं बैठे थे, सबने एक दूसरे से पूछा, सभी चेले एकमत थे, गुरुजी यहीं बैठे हुए थे। तो गुरुजी ने कहा होगा, आपने सुना होगा ना, गुरुजी ने कहा बस फर्क ये था तुम बाहर भागे, मैं अंदर भागा, बस इसी की आवश्यकता है। जब कभी कोई विपरीत परिस्थिति देखने में आए, पांच तत्वों की हलचल भी देखने में आए, जो अंत समय में होना ही है, तो हमें अंदर भागने का अभ्यास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो पूछवा लेता था संदेशियों से, संदेशी कभी जाती थी कि भाई जाओ पूछ के आना कि उस ब्रह्मा में और मुझ में क्या अंतर है, तो संदेशी बताती थी बाबा बिल्कुल एक जैसा ही सब है, सिर्फ उस ब्रह्मा में तेज बहुत है, प्रकाश बहुत है। तो बाबा का ये अभ्यास रहता था, मैं भी अपने अंदर उस तेज प्रकाश को लाऊं और संपूर्ण मूरत बनूं। ऐसे हम लोगों का भी ना वो संपूर्ण मूरत हमारे अंदर है। जैसे कभी बिल्कुल एकांत होके जाएंगे, अपनी संपूर्ण मूर्ति के जब दर्शन करेंगे, तो जैसे ही उस संपूर्ण मूर्ति को देखेंगे, तुरंत ही ऐसा फीलिंग आएगा कि बस अब मैं ऐसा बना कि बना, ये बस बनने ही वाली हूं, बस मुझे ये ही बनना है। तो एक तो ये अभ्यास बहुत जरूरी है। दूसरा, हम सब लोग बाबा के बच्चे बन गए, ब्रह्मचारी बन गए, ब्रह्माचारी बनने का प्रयास कर रहे हैं, ब्रह्मा बाबा के कदम में कदम वो सब कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक बात की कंप्लेंट अक्सर करके बच्चों की बाबा से रहती है। कौन सी कंप्लेंट? कि बाबा विकारी संकल्प तो नहीं आते, लेकिन व्यर्थ संकल्प अभी तक भी आते हैं, व्यर्थ बातें, ये क्यों, क्या, कैसे, क्यों हुआ आदि आदि। तो ये व्यर्थ जो है ना, वास्तव में उस व्यर्थ ने ही हमारी संपूर्णता को ढका हुआ है। एक मूर्तिकार था, बड़ी अच्छी मूर्ति बनाता था, सब कहते थे आप तो मूर्ति पत्थर में से इतनी बढ़िया बढ़िया तराश लेते हो, कैसे बनाते हो? तो कहता है नहीं, मैं मूर्ति तो बनाता नहीं हूँ, पत्थर लेता हूँ और जितना उसके चारों तरफ वेस्ट है, व्यर्थ है, उसको निकाल देता हूँ, तो मूर्ति तो अपने आप ही प्रत्यक्ष हो जाती है। बात वही है, लेकिन व्यर्थ को जितना हम निकाल देंगे, हमारी संपूर्ण मूर्ति अपने आप ही प्रत्यक्ष हो जाएगी। वो ही एक रस स्थिति की तरफ हमें गाइड करती रहेगी। बस अंतरात्मा जरूर हाँ कोई ना कोई बात कभी गलत करते हैं ना, बुद्धि में तो है, मर्यादा क्या है, बाबा ने क्या कहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, बाबा ने सब बातें बताई हैं, लेकिन वो बताते हुए भी हमें क्या करना है, न चाहते हुए भी पुराने संस्कारों के वशीभूत होकर वो कार्य हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए, वो वाणी में बात आ जाती है जो ब्राह्मण कुलभूषण की डिक्शनरी में नहीं है, वो मन के अंदर संकल्प आ जाते हैं जो संकल्प ब्राह्मणों के तो अब आने की बात नहीं, मन के वो वृत्ति स्वपन में भी नहीं आने चाहिए। तो इसीलिए बाबा ने यही बताई है कि वृत्ति, अपनी वृत्ति को हम, वृत्ति बड़ी सूक्ष्म है, अपनी वृत्ति को अभी हम चेक कर सकते हैं कि मेरी वृत्ति कितनी तक सतो प्रधान हुई है। और कैसे चेक करेंगे, अपने स्वपन की क्वालिटी से, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड, एक होता है कॉन्शियस माइंड मन होता है, मन होता एक ही है लेकिन दो लेवल पर काम करता है मन, एक कॉन्शियस माइंड एक सब कॉन्शियस माइंड, और सब कॉन्शियस माइंड बड़ा शक्तिशाली होता है। कॉन्शियस माइंड माने जागृत अवस्था, जैसे कि अभी हम लोग आपस में एक दूसरे से बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये जागृत अवस्था, ये कॉन्शियस माइंड है। और सब कॉन्शियस माइंड होता है बहुत बहुत शक्तिशाली, और वो आता है ज्यादातर एक तो ऑटो सजेशन, अपने आप ही अपने को हम जिस जो सोमान बाबा ने दिए हैं उन सोमान को रिपीट करने से, बस मैं विजय रतन हूँ, मैं विजय माला का मणका हूँ, बाबा कल पहले भी आपने मुझे विजयी बनाया था, अभी भी आप विजयी बना रहे हो, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं हार ही नहीं सकती क्योंकि मैं माँ बाबा के गले का हार हूँ, आदि आदि इन समानों का जितना हम चिंतन, ऑटो सजेशन, जैसे नए शिविर में कोई आता है तो नया देते हैं ना पहले ही योग करा के, मैं आत्मा हूँ, भृगुटी के बीच में हूँ, आदि आदि, ऐसे ही ये ही ऑटो सजेशन, अपने को हम खुद ही महानता से महान वो संकल्प देते रहेंगे तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाएगा, बार बार देने से हमारे अचेतन मन के अंदर घुस जाएगा, उससे क्या होगा, स्वप्न भी आएंगे, वो ही अचेतन मन के अंदर जो संकल्प भर गए हैं वो ही नई दुनिया के ही संकल्प आएंगे, नई दुनिया की ही बातें आएंगी, बाबा की ही बातें आएंगी। तो आवश्यकता भी ये अपने अचेतन मन को शक्तिशाली बनाने की है, और जितना जितना उसको शक्तिशाली बनाते जाएंगे उतना उतना आगे बढ़ते जाएंगे, तो एक इस बात की आवश्यकता है। इसके साथ साथ और किन बातों की आवश्यकता है, बाबा ने कहा कभी फेलियर होता है, असफल होते हैं, असफल होते हैं, उसका कारण क्या है कि एक मुख्य कारण, तीनों कालों को जानते हुए भी उन कालों को बुद्धि में नहीं रखते, और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और इस कारण से ऐसे कर्म हो जाते हैं जो हमें असफलता की ओर ले जाते हैं। इसीलिए बाबा कहता है अब ये अभ्यास करो सेवा करते करते कि हम तीनों प्रकार की सेवाएं इकट्ठी करें, जैसा यज्ञ के आदि में करते थे, मनसा वाचा कर्म, गए किसी को समझाने के लिए तो हमेशा बहनें बताती हैं, दादियां बताती थी, दो बहनें, एक बहन समझा रही है कोई बात ज्ञान की, दूसरी एकदम योग में स्थित होके योग की दृष्टि दे रही है। तो अगर दो नहीं है, एक भी है, तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं जितनी इकट्ठी होंगी उतना हमारी एक रस स्थिति और बनती जाएगी। तो ये तीनों स्थितियां बनाने के लिए है, ये आवश्यक है। तीन बिंदी का प्रयोग भी हम करते, बाबा ने कुछ नहीं छोड़ा ज्ञान में, लेकिन सारी बात है अभ्यास की। अभ्यास करते रहें और अभ्यास जितना होता रहेगा उतना सफल होते रहेंगे। और जब हमें मालूम है, अब ये प्रकृति का प्रकृति पांच तत्व, इनके द्वारा ही भारत में अधिकतर परिवर्तन होना है, विनाश होना है। तो इनको हम कैसे वो करें, कैसे इनको वश में करके करें हैं? तो इसके लिए मुझे याद आता है जानकी दादी की बात। जानकी दादी एक बार विदेश से आए और अहमदाबाद लोटस तक पहुंचे, वहां उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, सीरियस। डॉक्टरों ने बहुत प्रयत्न किए लेकिन तबीयत ठीक नहीं हो सकी। तो डॉक्टरों ने बोला भी कुछ नहीं हो सकता, जिसको बुलाना हो बुला लो। और ये समाचार मधुबन में भी दिया गया, और 31 दिसंबर का दिन था 1999, वो बदल रहा था पूरा सेंचुरी, तो 2000 आने वाला था, 99 का आखिरी दिन। तो बाबा आते ही हैं, बाबा आए हुए थे नीचे शांतिवन में, तो बाबा को दादी ने और निर्वैर भाई गए बाबा के पास, और बाबा को बोला कि बाबा दादी जानकी की तबीयत तो बहुत सीरियस है, डॉक्टरों ने भी जैसे जवाब दे दिया है। तो बाबा ने सुना, बाबा ने कहा नहीं बच्चे, उस बच्ची को कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति जीत है, प्रकृति जीत है। तो बाबा की तरफ देखा दादियों ने और निर्वैर भाई और भी वरिष्ठ भाई थे, तो बाबा ने कहा मन जीते जगत जीत तो बन रहे हो, लेकिन जब तक प्रकृति जीते जगत जीत नहीं बनेंगे तब तक संपूर्ण अवस्था को नहीं पा सकेंगे। उसका भाव यह है प्रकृति जीत, देखो बस इधर तो बाबा ने कहा रात को, और दादी ने भी बिल्कुल मक्का दृढ़ता के साथ इसको धारण किया, बताया कि बाबा ने ये बोला है दादी आपके लिए। अगले दिन सुबह तो दादी बस काफी ठीक हो गई और दोपहर को वहां से निकल के शाम को यहाँ आ गई। और उसके बाद 20 साल तक, कितना 20 वर्ष तक दादी ने कितनी सेवा की, और कितना दादी ने चारों तरफ बाबा का नाम रोशन किया। तो हमें भी सबको मन जीते जगत जीत तो हो रहा है। लो मैं बताता हूँ, अक्सर करके बताया भी हुआ है, मुझे एक सौभाग्य मिला है कि अंतिम दो दिन मैं बाबा के पास था, 17 और 18 जनवरी को, और बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का मुझे मौका मिला इन आंखों से। तो बाबा को देखते जब, हमेशा पहले जब भी बाबा को मिलते थे बाबा पूछते थे हाँ बच्चे क्या बात है, कोई प्रश्न है क्या बात, तो हम बोलते थे, बाबा समाधान देते थे उसका। लेकिन अंतिम दो दिनों में 18 जनवरी को और 17 जनवरी को हम करीब 5-6 बार बाबा से मिले, तो बस बाबा से मिलते ही बाबा ने दृष्टि दी, और दृष्टि देकर बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाए। हमें एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन बाबा ने नैनों से मन के भाव को पढ़ लिया और उसका समाधान दे दिया। एक बार, दो बार, तीन बार, दो दिन में पांच छह बार ऐसा। ये है मन जीते। बाबा की अवस्था इतनी महान हो गई थी, बाबा ने अपना मन जीत लिया था। क्यों? क्योंकि मन जीतने की अवस्था अल्टीमेटली लास्ट स्टेज होती है, जब बहुत समय तक एक रस स्थिति बनी रहती है। मन में ही तो संकल्प होते हैं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन इसमें ये संबंध की बात। तो समय हो गया, मैं तो यही चाहूंगा कि ब्रह्मा बाबा ने मन जीते जगत जीत का तो ये उदाहरण पेश किया, और जाते जाते 18 जनवरी को भी जब बाबा ने मुरली चलाई, और मुरली चला के बाबा ने बस बच्चों को कहा, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है, और विदाई लेके बाबा गए दादी जी के हाथ में हाथ, और नैन मुलाकात करते बाबा ने विदाई ली। लेकिन मन जीते जगत जीत का तो अनुभव बहुतों ने किया कि बस बाबा के सम्मुख जाते थे और बाबा उनके मन को पढ़ के उनके उत्तर दे देते थे, लेकिन प्रकृति जीते। तो ये पांच तत्वों का बना शरीर 18 जनवरी को बाबा ने छोड़ा, 18 की रात रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, 21 को दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। लेकिन बाबा का शरीर न तो काला पड़ा, न कोई दुर्गंध आई उसमें से, और वैसे फ्लेक्सिबल साधारण मनुष्यों की तरह तो नहीं, लेकिन काफी हद तक थोड़ा बहुत उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी थी। ये है प्रकृति जीते जगत जी, प्रकृति को भी जीता। दादी, जानकी दादी अक्सर कहती थी, मैं नहीं चाहती कि जब मेरा शरीर छूटे तो सारे दुनिया से, क्योंकि इतने सारे विश्व में सेंटर खोले हैं, सब लोग आएंगे, कितना बाबा का पैसा खर्च होगा। तो ड्रामा अनुसार हुआ भी ऐसा ही, मालूम है ना क्या था, कोविड था और दादी के ऊपर से शरीर लाया गया, और बस मुश्किल से 15-20 लोग यही वाले ही थे, ज्यादा गवर्नमेंट ने अलाउ ही नहीं किया। तो ये आत्माओं के ना संकल्प पर ये बहुत कुछ निर्भर करता है। तो हम सब लोगों को भी ऐसा बन के मन जीते और प्रकृति जीते जाना है। ओम शांति।